ओम शांति।
आज के विषय मैनेजिंग द सेल्फ। इस विषय पर कुछ विचार शेयर करने का सो अवसर मिला है, ये बहुत बहुत आभारी हूं। खास करके आज का जो सब्जेक्ट है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर देखे तो लाइफ इज लाइक अ सी गोइंग एडवेंचर। व्हाई आई से सी गोइंग एडवेंचर? जस्ट लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, व्हेन ही स्टार्टेड अ जर्नी आउट इनटू द अननोन, क्योंकि उसके पहले किसी ने समुद्री यात्रा की नहीं थी, एंड ही हैड नो मैप्स। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास उस समय कोई नक्शा भी नहीं था, कहां जाना है, कैसे जाना होगा। बट ही हैड वन थिंग एंड दैट वॉज अ कंपास विच गेव हिम अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, और उस कंपास के बल पर वो काफी हद तक सफल हुए भी। बट वेन ही सेट आउट इन टू द अननोन, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द साइक्लोन्स और sea storms, the high waves and the waters that would come into his ship and the sharks that will be after him, and there are some undercurrents also. Hai na, samudri yatra mein ye sab cheeze hoti hai, undercurrents, aur us undercurrents ka kisi ko gyan hi nahi tha कि कैसे वो पूरी जहाज को कंट्रोल करने लग जाते। लेकिन जब डायरेक्शन उसको मिलता रहा तो उसके बल पर वो चलते रहे। इसी प्रकार वर्तमान समय के जिस युग में हम जी रहे, दिस एज इज ऑल्सो एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होना है पल भर के बाद, कोई पता नहीं, एंड वी ऑल्सो डू नॉट हैव एनी मैप्स। The worst part is we do not even have a compass that can give us a direction in our life. कि अब ऐसा समय आएगा तो ऐसे हमें चलना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो compass कौन सा? Compass है values। और वो values का compass भी जब use करने नहीं आया मनुष्य को, तो कहा ये काम नहीं करता है, इसलिए फेंक दो उसको, है ना? आज अगर सच्चाई के बल पर कोई जीने जाएगा तो क्या होगा? जी नहीं सकता है। सो गिव अप ट्रूथ। आज कोई ईमानदारी से अगर जीने जाए तो क्या होगा? जी नहीं सकता है। सो गिव अप ऑनेस्टी। इस प्रकार एक एक वैल्यूज को भी हम छोड़ते गए अपनी लाइफ से, एंड नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम। इस प्रकार समय आ रहा है जिसको कहते हैं रैपिड चेंजिंग टाइम्स। अच्छे समय में हम अच्छे हैं वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब रैपिड चेंजिंग टाइम्स विथ एडवर्स सिचुएशंस, और ऐसे समय में वी लूज कंट्रोल अपॉन आवर ओन सेल्फ, कि उस समय अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बाकी सबको मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सेल्फ के ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं रहता है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट में अगर देखें तो मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ फोर वर्ड्स, मैन प्लस एज प्लस मैन प्लस टी। इज मेड अप ऑफ फोर वर्ड्स कि वी ऑलवेज वॉन्ट टू मैनेज अदर्स, दूसरों को मैनेज करने में हम लगे हुए, बट फॉरगेटिंग दैट द मैन इज बिफोर द मैन, द सेल्फ इज ऑलवेज बिफोर अदर्स, एंड हाउ फार कैन वी मैनेज आवर ओन सेल्फ। इसी शब्द को अगर हिंदी में देखे तो मन होता है। हम अपने मन को मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकते हैं, मन को मैनेज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा सूक्ष्म है, बहुत जल्दी भागता है, खिसक जाता है, वेरी स्लिपरी माइंड. चलो मन को छोड़ो, सूक्ष्म है, लेकिन सेल्फ को मैनेज कहां तक कर सकते हैं? और वो सेल्फ को मैनेज करने के लिए चाहिए एज. एज का मतलब यहां कोई फिजिकल एज के साथ नहीं है. किसी ने ठीक ही कहा है, एज डज नॉट मैटर, इट इज द करेज दैट वन नीड्स टू हैव. साहस चाहिए, शक्ति चाहिए आज के युग में अपने आप को मैनेज करने की. क्यों मैं ये कहती हूं कि शक्ति चाहिए अपने आप को मैनेज करने की? हाँ, हम दूसरों को मैनेज करने की शक्ति रखते हैं. दूसरों को हम कह देते हैं आपको ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, इस प्रकार करना चाहिए था. उसको अनेक डायरेक्शंस हम दे सकते हैं, लेकिन जब स्वयं पर बात आती है तो हम क्या कहते हैं, क्या करें? परिस्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था, लोग ऐसे थे, तो कैसे करते थे, है ना? तो उस समय हम ब्लेम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और इसीलिए अपने आप को छुड़ा देना चाहते हैं कि इसीलिए मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सके. आज छोटा सा ऑर्गन है जबान, उसको मैनेज कर सकते हैं? हाँ, 2.5 इंच की जबान है, इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं? इसके ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर है, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर कहावत है, दिस टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, है ना? और इसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो उस लाइफ का क्या होगा? वो लाइफ को कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? परिवार का क्या होगा? क्या हम परिवार की जिम्मेदारी के लिए भी समर्थ होंगे? अगर एक सेंस ऑर्गन को हम मैनेज नहीं कर पाए, ये छोटा सा कान है, हर बात के लिए कितना उपयोगी है, हर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ये कान के बिना कोई जी सकता है? एवरी सेकंड वी नीड इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ना हो तो वी कैनॉट सर्वाइव. हर वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसको हम कितना मैनेज कर सकते? ये कान का शेप देखो, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है. यहां से जो इंफॉर्मेशन जाता है ना, बीच में दिमाग है, दो कान के बीच में दिमाग है, इसका क्वेश्चन मार्क का शेप है. यहां सारे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, क्यों क्यों कहा उसने ऐसा, क्या मतलब था, किस लिए, कैसे कहा, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं. और फिर वो कहां से निकलता है, इतने क्वेश्चन का मंथन चलने के बाद वो फिर यहां से निकलता है ना, जबान से. दैट इज वेयर वी कैन नॉट कंट्रोल एंड मैनेज आवर ओन सेल्फ. सो द फर्स्ट क्वालिटी दैट आई नीड टू मैनेज माई सेल्फ इज करेज. साहस चाहिए अपने आप को मैनेज करने. दूसरा, एज का मतलब है मैच्योरिटी, समझदारी. ये भी नहीं है कि हर बार मुझे ही अपने आप को मैनेज करना है, नहीं, हर बार मुझे ही अपने आप को कंट्रोल करना है, नहीं. समझदारी चाहिए कि कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कितने अंश तक करना है, किस विधि से करना है. अगर ये समझदारी, ये मैच्योरिटी अगर हमारे पास नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज जस्ट लाइक अ बॉइल्ड फ्रॉग. हालत ये होती है, आपने सुना होगा शायद बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम, सुना कि कैसे, नहीं सुना है कि प्रकृति के अंदर मेंढक है, फ्रॉग, एंड फ्रॉग हैज अ वंडरफुल कैपेसिटी टू एडॉप्ट इट्स बॉडी टेम्परेचर विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर. उसको बाहर गर्म वेदर में रख दो, वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेगा, वहां से उठा करके उसको एक ठंडे पानी के पॉट में डालो तो वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा। वो पॉट को उठा करके एक स्टव पर रखो और धीरे धीरे पानी को गर्म करना चालू करो। जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली द वॉटर इज हीटेड अप, द फ्रॉग थिंक्स हिमसेल्फ टू बी सो क्लेवर कि आई हैव द अडॉप्टिंग कैपेसिटी सो आई कैन अडॉप्ट, एंड ही स्टार्ट्स अडॉप्टिंग विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर, वॉटर टेम्परेचर टू दैट एक्सटेंट दैट द वॉटर स्टार्ट्स बॉइलिंग वेयर इट कैन नॉट अडॉप्ट एनी फर्दर, आगे अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और सारी शक्ति तो उसने अडॉप्ट करने में लगा दी, अब वो पॉट से बाहर कूद भी नहीं सकता है ना। अगर पहले में इनिशियली जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हुआ और कूद जाता था तो कूद जाता था, लेकिन अब सारी शक्ति लगा देने के बाद अब कूद भी नहीं सकता है। एंड अल्टीमेटली हिज बॉइल टू डेथ। सिमिलरली इन नेचर देयर इज अनदर क्रीचर विद दिस वंडरफुल कैपेसिटी एंड दैट्स अ ह्यूमन बीइंग। हर जगह अडॉप्ट करता है, हर जगह एडजस्टमेंट है ना, फैमिली में एडजस्टमेंट, वर्क प्लेस पर एडजस्टमेंट, सोसाइटी में एडजस्टमेंट, फ्रेंड्स के साथ अडॉप्शन, हर जगह अडॉप्शन एंड एडजस्टमेंट। अडॉप्शन बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, कभी कभी तो परिस्थितियों के साथ भी अडॉप्ट करने लगता है, समस्याओं के साथ भी अडॉप्ट करने लगता है, नेगेटिविटीज के साथ भी अडॉप्ट करने लगता है। और ऐसे समय में धीरे धीरे अडॉप्ट करते 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 जब वो परिस्थिति कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एंड ही हैज यूज्ड ऑल इट्स स्ट्रेंथ इन अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग दैट ही कैन नॉट जंप आउट ऑफ द सिचुएशन एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल्सो बॉइल्ड टू डेथ। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव, सर्वाइवल बिकम्स अ प्रॉब्लम। व्हाई? No maturity. When to adopt, where to adopt, how to adopt, what extent we should adopt, with what technique we have to adopt. So, courage to hai. Lekin courage ke saath maturity bhi chahiye. Agar courage ke saath maturity samajhdari nahi hai, tabhi bhi wo courage becomes a problem for our own survival. इसलिए कई लोगों के पास वैल्यूज है बट देयर वैल्यूज आर बिकमिंग प्रॉब्लम फॉर देयर ओन सेल्फ। क्यों? नो मैच्योरिटी, दे डू नॉट नो हाउ टू यूज दोज वैल्यूज विथ विच टेक्निक एट व्हाट टाइम इन व्हाट वे। तो वैल्यूज आर रॉन्ग ये नहीं कह सकते हैं बट मैच्योरिटी की कमी है इसीलिए वो वैल्यूज उसके लिए सर्वाइवल के लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। तीसरा, एज मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभव। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन अच्छी तरह से जी लेता है, लेकिन वो अनुभव उसके लिए उपयुक्त है, वो अनुभव वो दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकता है। एवरीबडी हैज टू क्रिएट देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन देयर ओन वे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आज अगर अपने घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उसको अगर माँ बाप कहे कि बेटे जब हम छोटे थे तब हम ऐसा करते थे, ये हमारा अनुभव कहता है और इसीलिए तुम भी ऐसे करो, तो बच्चे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चे? वो टाइम नहीं है, आपका जमाना गया है ना। कि हाँ, उस समय में वो अनुभव उपयुक्त थे, लेकिन आज के समय में वो अनुभव काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड, एनवायरमेंट हैज चेंज्ड, एटमॉस्फियर हैज चेंज्ड, सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, everything is different, and so we are going through rapid changing times. Not only rapid changing times, but I would say delicate changing times. Why I use this word delicate? नाजुक समय से हम क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई परिस्थिति ना आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई बात ना हो, किसी के साथ कोई क्लैश ना हो, कोई समस्या ना, ऐसा कोई दिन जिंदगी में जा रहा है? पिछला एक साल मुड़ करके अगर हम देख ले, कैसा कोई दिन खाली गया है जिस दिन के लिए कहे हाँ आज का दिन बहुत अच्छा गया, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो क्लैशेस, नो प्रॉब्लम्स, नथिंग एट ऑल, ऐसा कोई दिन खाली है नहीं। और आने वाले समय में क्या समझते हैं, परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होंगी, समस्याएं बढ़ेगी या कम होंगी, क्लैशेस बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे। ऐसे समय में जो आने वाला ऐसा रैपिड डेलिकेट चेंजिंग टाइम्स है, ऐसे समय में अगर भीतर से व्यक्ति नाजुक हो जाए, डेलिकेट हो जाए या कमजोर हो जाए, तो आने वाले समय में चलने की समर्थ ही रख सकता है? भीतर से नाजुक कैसे हो जाते हैं? और कोई कमजोरी नहीं है, जब कमजोरियों का सपोर्ट ले लेता है तब भीतर से नाजुक होने लगता है या कमजोर होने लगता है। कमजोरी का सपोर्ट मींस वीकनेसेस, और कोई वीकनेस नहीं है, बस मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये वीकनेस है। अब ये वीकनेस मुझे वीक करेंगी या मजबूत करेगी? वीक करेगी, इट्स अ वीकनेस, एंड वीकनेस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अस वीक फ्रॉम विद इन। बाहर से भले सुपरफिशियल रूप से कोई व्यक्ति कितना भी बहादुर दिख रहा हो, वो वीकनेसेस का सपोर्ट लेकर के, लेकिन भीतर जब फियर होता है, वीक होता है, तब वो सुपरफिशियल फॉर्म बनाता है, ऐसा दिखाता है, लेकिन भीतर से वो कमजोर हो रहा है। और जब भीतर से कमजोर हो रहा है तो उसकी जो डेस्टिनेशन है, हर एक इंसान की डेस्टिनेशन क्या है, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और ये डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है, लेकिन आधार जो लिया है चढ़ने के लिए कमजोरी का, वीक सपोर्ट्स, डू यू थिंक इज गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल? इम्पॉसिबल। सो वी नीड अ फर्म फाउंडेशन, एंड द फर्म फाउंडेशन कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय वैल्यूज विच कैन गिव अस इनर स्ट्रेंथ। So these are the three qualities that are essential in the present time to manage our own self. और दूसरों को मैनेज करने के लिए चाहिए टी। टी means tact. When I have the art of managing myself, I have the tact to manage others also. But if I don't have the art of managing myself, I cannot be a source of inspiration for others. My inspiration will manage others. That is the need of the hour. किसी को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि समय इस प्रकार से आ रहा है कि अगर देखा जाए वर्तमान समय को, कि कैसे वर्तमान समय चल रहा है, there are three key propositions. The first is there is no turning back. Things are not going to go back to those stable patterns of the past. क्योंकि इस समय हम देखते हैं there is global competition. हर क्षेत्र में कहां competition नहीं है। आज एक बच्चों को स्कूल के लिए एडमिशन चाहिए, वहां भी competition है। करियर के लिए भी competition है। एग्जाम्स, results, हर जगह competition है। लाइफ में हर कदम में जैसे उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, और उस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए ही नीड्स अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक कहानी याद आती है कि दो व्यक्ति थे, एक इंडियन और एक अमेरिकन, और दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने शेर का आवाज सुना, हर्ड अ रोर ऑफ अ लायन। तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिया, रनिंग शूज पहन लिया। तो वो अमेरिकन आश्चर्य खाता है, उसको पूछता है, ये रनिंग शूज तुम क्यों पहन रहा है, ये रनिंग शूज पहनने से तुम शेर से आगे दौड़ेगा क्या? वो इंडियन उसके तरफ देखकर कहता है, नहीं शेर से तो आगे नहीं दौड़ सकता, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं ना? शेर को एक शिकार मिल जाता उसके बाद वो दूसरे के पीछे तो भागेगा नहीं, तो तब तक तो मैं कहां का कहां पहुंच जाऊंगा, है ना? दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड. इफ वी वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एवरी मोमेंट वी हैव टू पुट दोज रनिंग शूज ऑन. और अगर रनिंग शूज नहीं है तो सर्वाइवल इज अ प्रॉब्लम, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. रिवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप, उसके साथ चलना. उस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के साथ अगर नहीं चल सकते हैं तभी भी डिफिकल्ट है. डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस, अनसर्टनिटी की तो एज है. इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेलरेटिंग चेंज एंड मैनी अदर्स. सो वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेरिंग्स. एंड इट हैज बीन सीन दैट दोज पीपल विल सक्सीड इन फ्यूचर हु हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ वेयर दे आर हेडेड फॉर एंड वॉट दे स्टैंड फॉर. अ वेरी क्लियर विजन, मिशन एंड what they stand for, their value system. हर जगह इसीलिए values का importance आता है, क्योंकि अगर ये purpose clear नहीं है कि what is the purpose of this life, आज westerners के सामने सबसे बड़ा ये question mark है कि what is the meaning of life, what does life mean, क्या खाना पीना सोना कमाना यही, या there is something else which we do not know. So what is the purpose of life, so that I can give my life a meaning and I can lead a meaningful life. Aaj ye purpose clear na hone karan we are just laboring in life. Ye Dilwara temple India ka ya world ka best marble architecture work kiya hua hai. इतनी सुंदर कार्विंग्स है वहां पर. एक बार दो व्यक्ति शिल्पी पत्थर तोड़ रहे थे, कार्विंग कर रहे थे. एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने एक को पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, आई एम कटिंग अ स्टोन. थोड़े आगे गया, देखा दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा था, उसको पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं. Both of them were doing the same type of job. One was cutting a stone and one was building a temple. See the difference? Attitudes. One was laboring in his life and one was enjoying, was able to give a meaning to his life. कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, कि ये एक पीस मंदिर का सबसे अच्छा पीस बन सकता है कि जिसको लोग देख करके अप्रिशिएट करेंगे. एंड सो ही वॉज एबल टू पुट द हार्ट इन टू हिज वर्क, एंड सो ही वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट. कि रात तक भी, शाम हो जाती थी तभी भी वो थकता नहीं था, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था. रात को भी सोचता था कि ये मूर्ति के अंदर और ऐसा करूं, ये करूं, वो करूं. आप देखेंगे ये दिलवाड़ा के एक एक मूर्ति के अंदर भी, उनके अगर नाखून देखेंगे आपको, नाखून इतने सुंदर, अंगुलियां, हस्त रेखाएं इतनी सुंदर बनी हुई है, जो लगता है कि कितना उसने अपने हृदय को साथ में जोड़ दिया था और इसलिए अच्छे से अच्छी चीज को वो बना पाए. लेकिन जो लेबर कर रहा है वो शाम तक ऐसा थक जाता था. तो आर वी जस्ट लेबरिंग इन आवर लाइफ और डू वी हैव अ पर्पस इन आवर लाइफ? आर वी लीडिंग अ पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ? क्योंकि ओनली दोज पीपल विल सक्सीड हु हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ वेयर दे आर हेडेड टू एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर. Why? All reference points are just going to fall off. And so we need to find new bearings to steer through the turbulent times that are going to come in the future. So, different skills are required to be effective in this environment. ये present environment में effective होने के लिए वो skills कौन सी है? वो skills कोई school colleges में जो सिखाई हुई वो skills नहीं. But these are self-managing skills like intuition, discrimination, flexibility, a clear focus, tolerance, stillness, etc. and many others. And who can teach me how to develop a clear focus? Is there any institution that can teach us how to develop a clear focus? How to tolerate? How to be flexible? Where they can come from, they have to be tapped from inside, brought out from within. Then only we will be able to manage ourselves in the future times. क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखे जो डिस्टर्ब हो जाता है वो मेरे थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं. समय जब विपरीत आता है उस समय सबसे अधिक अफेक्टेड जो हो जाते हैं हमारी फीलिंग्स बिहेवियर थॉट प्रोसेस इमोशंस एटीट्यूड्स दिस गेट अफेक्टेड द मोस्ट. और इसलिए ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं अपसेट हो जाते हैं तो उसको सेट करने में काफी समय हमारा निकल जाता है. सो दैट वी कैन बिकम अ बेटर लीडर. लीडर हियर मीन्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, बिकमिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स थ्रू बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स. So that we are able to take up the responsibility of our own life and stop blaming others or circumstances. क्योंकि अक्सर करके हम यही करते हैं, जब भी कुछ होता है दोष दूसरों पर डाल दो, है ना. बचपन से यही संस्कार मिले. एक बच्चा 1.5 साल का जब होता है चलना आरंभ करता है, कुछ पकड़ के खड़ा होता है और बैलेंस रहता नहीं तो गिर जाता है. गिर जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है ना. प्रोटेक्शन, आंसू एक भी नहीं गिरेंगे उसको, लेकिन रोना चालू करता है क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरी माँ आएंगी मुझे डांट पड़ेगी. चलना नहीं आता है तो क्यों चलने गया था, कहीं लग जाता था तो. इसीलिए वो अपना प्रोटेक्शन ले लेता है कि रोना चालू कर देता है और वो रोने के कारण माँ पिघल जाती है, अरे कहीं लगा तो नहीं उसको. और आकर के फिर क्या कहती है, नहीं बेटा तेरा दोष नहीं था, ये फर्श ऐसा था ना, हाँ ये लकड़ी ऐसी थी, ये ऐसा था, इसीलिए तेरा दोष नहीं है, इसका दोष है. उस 1.5 साल की उम्र से हमें ये संस्कार मिले हैं कि दोष दूसरे पर डाल दो. और उस बच्चे ने भी जब देखा कि माँ ने दोष दूसरे पर डाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो भी चुप हो जाता है. सी? और तब से लेकर हमने ये सीख लिया और अभी तक भी हम यही करते हैं. जीवन में जो कुछ भी होता है मैं निर्दोष हूं, दोष दूसरे, और इस प्रकार अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं. और हम देखते हैं कि द मोमेंट आई पॉइंट आउट द फिंगर टू अदर्स कि ये दोषी है, means I am completely disempowering myself. सारी शक्ति मैं उसको दे देती हूँ. Now you are able to take control of my state of mind and emotions. और इसलिए परिस्थिति हमारी मन की स्थिति को कंट्रोल करने लगती है. परिस्थिति मुझे हंसाना चाहे तो मैं हंसू, परिस्थिति मुझे रुलाना चाहे तो मैं रोऊं, परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब करना चाहे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, परिस्थिति मुझे अपसेट करना चाहे तो मैं अपसेट हो जाऊं. सो द लोकस ऑफ कंट्रोल इज इन
the hands of others because I have disempowered myself. And so, my state of mind, my emotions get affected. And then, we are not able to communicate at a deeper level. Superficial level par aa jaate hain hum. Dosh dusra par dal diya aur superficial communication ho jata hai. Aur jab ye sthiti aati hai, toh how can we manage the major life changes that are going to come? Uske liye kya hum wo samarthi apne andar rakhte hain? Kyunki aaj ki duniya mein agar dekhe, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है? हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है? और वर्क प्लेस पर कहां भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? भी कौन सा प्रॉब्लम आता है? हां, सेल्फ ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड. क्लैश ऑफ ईगोस. और जब ईगो क्लैश होता है तो नथिंग कैन वर्क आउट वेल एज प्लान्ड. हमने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है बट एवरीथिंग फेल्स बिकॉज ईगो क्लैशेस. घर में भी ईगो क्लैशेस दैट कैन डिस्टर्ब अ फैमिली, दैट कैन डिस्टर्ब एवरीथिंग. कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा कर सकती है वो. द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड इज ईगो प्रॉब्लम. और कई बार तो लोगों को यही नहीं पता चलता है कि ये मेरा ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है. होता है ईगो और समझते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारा. इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, इसके बिना हम कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे. लेकिन पता कैसे चले कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है? उसके बीच में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन तो होंगी. अभिमान है या स्वमान है, इसका पता कैसे चले? रिस्पेक्ट, अभिमान, ईगो, कैसे पता चले ये स्वमान है या अभिमान है? कोई है लाइन ऑफ डिमार्केशन कि जिसको हम कहे या दिस इज ईगो, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट सोचता है और भी शब्द में ही है. अभिमान है ना, अभिमान दो शब्द का बना हुआ, अभि और मान. अब बड़े का अभिमान क्या होता है? अब भी मेरी बात मानना चाहिए, है ना. और मान लिया तो ईगो सेटिस्फाइड, नहीं माना तो क्या होता है? टोटल डिस्टर्ब हो जाते, अपसेट हो जाते. तो अब भी मेरी बात मानना चाहिए. डिमांड्स, ईगो जहां है वहां डिमांड्स है. और छोटे का ईगो क्या होता है? अब भी मान मिलना चाहिए, हम भी तो कुछ है, हमें मान मिलना चाहिए. वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन इतना हम करते हैं, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ही नहीं है तो कौन करेगा? जैसे और इसीलिए वो करते नहीं और वो कहता है करना चाहिए अभी. तो फिर देखो क्लैश शुरू होता है ना. आज घर में आप जाते हो और हम छोटा बच्चा है, माँ बेटे को कहती बेटा एक ग्लास पानी लेके आओ, जाओ डैडी आए हैं, पानी लेके आओ. और वो इतना खुशी से अपना सब काम छोड़ करके जाता है, एक ग्लास पानी लेकर के आता है. लेकिन आप अपने टेंशन में आपने उसको थैंक यू बेटा नहीं कहा, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. दूसरे दिन आपको पानी का ग्लास मिलेगा, हाँ? क्या कहेगा वो? उसको अगर कहेंगे भी ना कि बेटा पानी लेके आओ तो कहेगा मैं बिजी हूं, होमवर्क कर रहा हूं, मैं खेलने में बिजी हूं. लेकिन उसी वक्त अगर आप ये कहते थे थैंक यू बेटा, दूसरे दिन कहना भी नहीं पड़ता है, जैसे ही आप आते हैं फटाफट वो अपना काम छोड़ करके दौड़ता है, पानी का ग्लास लेकर के आ जाता है. सी, क्योंकि उस बच्चे को हर पल पर हम सिखाते हैं कि जब भी तेरे को कोई चीज देता है थैंक यू कहना चाहिए. सी, वेस्टर्न कल्चर, पहले ऐसा नहीं था अपने भारत में, लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट किया है कि कहां भी उस बच्चे को लेकर के जाते हैं और कोई किसी ने उसको चॉकलेट दिया, किसी ने उसको टॉफी दिया, उसको तुरंत कहते हैं बेटा थैंक यू कहो आंटी को या अंकल को, तुमको जिसने दिया, और उसको जबरदस्ती भी बुलवाते हैं. और इसलिए बाद में जब आपको वो देता है ग्लास पानी का और देखता है, क्योंकि उसने ही हैज लर्न्ड कि मुझे हर जगह के कोई भी कुछ भी देता है तो माना थैंक यू कहना चाहिए। और जब वो देखता है मैंने दिया और ये तो हमको थैंक यू कहते ही नहीं है, सी हाउ इज ईगो इज हर्ट। सो दूसरे दिन अगर डर के कारण चलो वो लेकर के भी आया तभी भी वो दिल से नहीं लाता है। ये है एक कल्चर हमने एडॉप्ट किया है और इस कारण से भारतीय कल्चर जो है वो लुप्त होता जा रहा है। और ये ईगो यहां तो चलो घर में तो आपने उसका ईगो सेटिस्फाई कर दिया, उसको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन कह दिए कि हाँ हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो किया, ये बहुत कुछ कह देते हैं आप 10 लोगों को। लेकिन जब वो फील्ड में जाता है, दुनिया में जाता है बड़ा होकर के, और किसी ने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, उस वक्त उसको जो डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ही कैन नॉट मैनेज हिमसेल्फ। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो पहले नहीं आता था इतना, लेकिन आजकल हर जगह आ रहा है। और इस ईगो के कारण इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा एक फैमिली से बचते रहो, उसको कभी भी अपनी फैमिली में एंटर नहीं होने दो, परमिशन नहीं दो उसको। सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, ये सबसे पहले आती है। लेकिन ये कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका साथी जरूर होता है। और उसका साथी है मिस्टर डाउट। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ फिर मिस्टर डाउट आएगा, जरूर ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, इसने ही ऐसा किया होगा, फिर शंका शुरू हो जाती है। और जहां ये दो होते हैं वहां उसके 3 क्रिएशन होंगे ही होंगे। हाँ, उसके 3 क्रिएशन कौन से हैं? सबसे पहला क्रिएशन है जेलसी, सबसे पहला क्रिएशन है। ये शंका शुरू होती है, उसके बाद ईर्ष्या आने लगती है, अब इसको दिखाते हैं, अब उसको करते हैं, हाँ मालूम तो चले इसको, ईर्ष्या आती, लेग पुलिंग शुरू होता है, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करते हैं। दूसरा एक क्रिएशन है उसकी हेट्रेड, नफरत शुरू होती है जेलसी के बाद। और तीसरी क्रिएशन है एनिमोसिटी। ये 3 क्रिएशन है उसकी। मिसअंडरस्टैंडिंग कम्स फर्स्ट, देन मिस्टर डाउट फॉलोड, और उसके साथ ही इसके 3 क्रिएशन साथ ही चलती है। ये फैमिली में इतनी यूनिटी है, हाँ, और ये अगर किसी भी फैमिली में घुस जाए तो क्या हो सकता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, है ना। आज अगर कोर्ट में जाकर आप देखो जितने भी केसेस है, जो भी झगड़े होते हैं, और उसको अगर 2 पार्टी है, झगड़ा कहां से शुरू, आखिर बात क्या थी, तो आप देखेंगे कहां भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लीड्स टू डाइवोर्स, दैट स्पॉइल्स द फैमिली। भाई भाई को अलग कर देती है, बाप बेटे को अलग कर दिए तो सब को अलग कर देती है, फ्रेंड्स को अलग कर देती है। वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे घुसती है, फिर ये फैमिली उसके साथ आ जाती है पूरी। और मिसअंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से आती है जो पता भी नहीं चलता है कि कहां से मिसअंडरस्टैंडिंग आई। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं आपको, आप सबके पास नोटबुक तो है, एक लाइन ऐसे खींचो सभी, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम एट ईच एंड, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम एट ईच एंड। डन एवरीबडी? Anyone who has not done? Everybody has done. Now, how many of you have written one letter here, one letter here? How few have written one and one here, first and last here? नहीं, हमने क्या कहा at each end? हमने clear direction दिया कि राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम एट ईच एंड, राइट। तो किसने एक यहां लिखा, एक यहां लिखा, और कितनों ने फर्स्ट एंड द लास्ट यहां किया? सो कितनों ने ये किया? अच्छा, एंड हाउ मेनी रोट दिस? अच्छा, एंड व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर एट ईच एंड, इज इट? व्हाट डिड आई से? फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर एट ईच एंड, हाँ नहीं, हमने क्या कहा? यही कहा, हाँ, किसकी थी? हमने तीन बार रिपीट किया, लेकिन यहां तो सब समझदार बैठे, किसी ने तो पूछा नहीं मेरे को कि हमने समझा नहीं आपकी बात, हाँ, सारे समझदार बैठे हैं ना, तीन बार रिपीट किया हमने, तीन बार रिपीट किया, सब समझदार बैठे हैं, सबने किया, तो गलती कैसे हो गई? क्या मेरे तरफ से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था? वाज इट नॉट प्रॉपर?
हाँ, वालों से पूछने से गलती होगा।
हाँ,
वीडियो वाला ये बोलता है, हमने क्या रिसीव किया, दैट इज इंपॉर्टेंट।
अच्छा,
दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट,
राइट, आई एम रॉन्ग, हाँ,
दिस कंडक्ट, यू आर राइट, इन दिस कंडक्ट, यू आर राइट,
आई एम राइट एंड यू आर ऑल रॉन्ग, सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग तो नहीं हो सकते, यस, यस, राइट। सेंटेंस जो है द्विअर्थी है, दैट इट कन्वेज टू मीनिंग्स, सी बोथ आर करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। और उसमें क्या हो गया कि जब हमने बोला उस समय एक्शन किया, फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर एट ईच एंड, यू सी, सो यू आर वॉचिंग दैट, इसीलिए सबने ये गलती की, यू सी, हमेशा क्या होता है, हम बात करते हैं तो ऐसे बात नहीं करते, वी ऑलवेज टॉक विथ आवर बॉडी लैंग्वेज, फोन पर भी भले कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, तभी भी उसको मिलना, ये करना, ये करना, कितना हमारा एक्शन चलता है फोन पर भी, जबकि सामने वाला देख भी नहीं रहा होता है, फिर भी हम एक्शन करते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी एक्शन जो हम कर रहे थे उसको आप देख रहे थे, और इसलिए सबने यही समझा, एक इधर एक इधर, लेकिन हमारा वो भाव तो नहीं था। अब दूसरे तीसरे दिन अगर मैं आकर कहूं कि मैंने तो ये कहा था, आप कहेंगे नहीं आपने ये कहा था, मैं कहूंगी नहीं मैंने ये कहा था, अरे नहीं बाबा ये कहा था, यू सी, एंड दिस इज हाउ द ईगो क्लैशेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कम्स इन, फिर डाउट आता है, ये जरूर हमको सबके सामने नीचा दिखाना चाहता, देखा यही भाव है, डाउट तुरंत, और उसके बाद उसके प्रति जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी, और यही गुस्सा है, और वहां सेल्फ मैनेजमेंट होता ही नहीं, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, देन कितना भी हम बाद में कहे नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा भाव ये था, इसने ऐसा समझा या कहा, नथिंग डूइंग, नथिंग कैन मेंड अप दैट रिलेशनशिप, उसके बाद वो
मिसअंडरस्टैंडिंग
एटीट्यूड से आए, है ना, यहां कल से लेकर आप आए हैं, परसों से लेकर के, तो एक लक्ष्य है कि जो यहां सुनाया जाता है चलो हम उसको लेकर के जाएं हम, या अभी क्वेश्चन पूछना नहीं है या ये नहीं करना है, तो इसीलिए, हाँ इसीलिए पूछा नहीं, है ना, और इसीलिए एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम गलत है, लेकिन अगर वर्क प्लेस पर है तो ये कहेंगे हाँ हम गलत है, नहीं करते, हाँ होता है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, यही होता है, हाँ तो ये होता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात छोड़ो, घर में आप अपने परिवार में भी दो दिन तक फिर कम्युनिकेशन गैप, है नो इंफॉर्मेशन पासिंग ऑन, ब्रेकडाउन आ जाता है, है ना, फिर उस ब्रेकडाउन को ठीक करने में कितना टाइम लगता है, उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ओके आई एम सॉरी, बस इतना ही बोलना है, आई एम सॉरी, हो सकता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आगे कोई चीज बढ़ेगी, इसलिए आपने देखा दो दिन से यहां पर कितना स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई किसका बॉस है, कोई किसको कह रहा है, कोई किसको डायरेक्शन देने वाला मिला, ए क्यों ऐसा करो ऐसा करो। आज घर घर में एक फंक्शन होता है, 50 लोग आने वाले तो भी कितना टेंशन हो जाता है, और यहाँ 400 मेहमान है तो भी पीसफुल, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कम्युनिकेशन गैप। यस, ज्यादा होने से तो ज्यादा टकराव होता है एक्चुअली, तो जहां ज्यादा लोग काम करें ना वहां तो मिसअंडरस्टैंडिंग और हर एक का ईगो बहुत ज्यादा टकराए। तो लेकिन आज दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, मैन पावर जहां ज्यादा है, कम है तो शांति से काम चलता है, एक व्यक्ति 10 काम कर सकता है, लेकिन जहां ज्यादा है वहां ये तेरा काम, ये मेरा काम, ये तेरा काम, यही झगड़ा शुरू होता है ना। डेडिकेशन, द फीलिंग ऑफ डेडिकेशन, वो लेवल बहुत कम हो गया है, और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कि अगर एक ने उसको कहा भी तो इतना शांति से कह दिया कि तीसरे व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ा कि इसने इसको क्या कह दिया, और इतना शांति से वो एक्सेप्ट भी कर लेता और चलते। दिस इज द होल सीक्रेट, दिस इज स्पिरिचुअल पावर, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये स्पिरिचुअलिटी जरूरी है आज के युग में, क्योंकि अगर देखें हम रिस्पेक्टिंग हिज एबिलिटीज, किसी भी जो भी एबिलिटी हो, रिस्पेक्टिंग द एबिलिटी, सिमिलरली वैल्यूइंग द एबिलिटीज ऑफ द सेल्फ ऑल्सो, द सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्टिंग योर एबिलिटीज, दैट इज रिस्पेक्टिंग द सेल्फ, वैल्यूइंग योर एबिलिटीज एंड वैल्यूइंग द एबिलिटीज ऑफ अदर्स ऑल्सो। जिसको अपनी एबिलिटीज की वैल्यू होंगी वही दूसरों की भी वैल्यू कर सकते हैं, जिसको अपनी वैल्यू नहीं है तो वो दूसरों की भी वैल्यू नहीं कर सकते। इसीलिए ये सेल्फ मैनेजमेंट एक्चुअली देखा जाए तो भारत में बहुत पुराने काल से चला आ रहा है, कि पहले के समय में हम सुनते हैं कि भारत में गुरुकुल सिस्टम्स थी, और उस गुरुकुल सिस्टम में श्री कृष्ण भी पढ़ने गए, श्री राम भी पढ़ने गए, सभी गए, और वहां उन्हें क्या सिखाया जाता था, वहां उन्हें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया जाता था। कि श्री राम वॉज नॉट एन एक्सेप्शनल, कि वो आश्रम की सफाई नहीं करते थे, he used to do the cleaning of the ashram premises also. इसी तरह श्री कृष्ण वॉज नॉट एन एक्सेप्शनल, he used to go to the woods to bring the firewood. लकड़ी लेने के लिए जाते थे श्री रामा के साथ। Why? They should know the value of each and every ability, each and every work. कि कल जब वो राज्य के डोर को हाथ में ले तब उन्हें पता चले कि एवरी स्मॉलेस्ट वर्क की भी वैल्यू क्या है, सो दैट दे कैन गिव फुल जस्टिस टू हूएवर कम्स टू देम फॉर जस्टिस। उस समय से सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब ये गुरुकुल सिस्टम्स खत्म हो गई, वेस्टर्न कल्चर जब से आने लगा तब से तो लेकर के वी लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहा, और इसीलिए ईगो लेवल बढ़ता गया, और ईगो लेवल बढ़ता गया तो क्लैशेस भी बढ़ते गए, और वो भीतर से व्यक्ति को कितना खोखला कर देता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वेस्टर्नर्स में क्या है, आज भीतर से खोखलापन है, ताकत नहीं है, कोई भी चीज किसी ने कह दिया वो सहन भी नहीं कर सकते, इतना वो डिस्टर्ब हो जाते, इतना अपसेट हो जाते, इतना सेंसिटिव नेचर। और वही कल्चर को अगर हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, माने इफ वी आल्सो डू नॉट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आवर ओन एबिलिटीज, हाउ आर वी गोइंग टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द एबिलिटीज ऑफ अदर्स। चलो किसी ने नहीं किया, मेरे अंदर जो एबिलिटीज है उसको एप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, अब उसके पास एप्रिसिएशन की दृष्टि नहीं है, तो ये कमी किसकी, उसकी या मेरी, क्या कहेंगे, उसकी, और उसकी कमी के कारण मैं परेशान नहीं। उसके पास अगर दृष्टि नहीं है छोड़ दो उसको, यू गो ऑन डूइंग वैल्यूइंग योर एबिलिटीज, और उसको ज्यादा से ज्यादा कार्य में लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, उसके पास एप्रिसिएशन के शब्द नहीं इसलिए छोड़ दो, नहीं करना है, सो वी स्टॉप यूटिलाइजिंग आवर एबिलिटीज, दैट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसीलिए हमने जब छोड़ दिया तो वो एबिलिटीज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बढ़ने का तरीका है जितना ज्यादा उसका प्रयोग करो उतना ज्यादा वो बढ़ेगी, उसका प्रयोग ही नहीं करो छोड़ दो तो वो बढ़ेगी नहीं। हम छोड़ देते अक्सर करके कि छोड़ कोई करना ही नहीं है, अब जब छोड़ देते हैं तो वो बढ़ती नहीं और वो वैल्यू तो किया नहीं हमने। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग करो, जब सब लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे तब तो उसकी आंख खुलेगी कि भाई ये मेरे पास था, मैंने इसको नहीं पहचाना। तो दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि यू हैव द रिस्पेक्ट फॉर योर ओन एबिलिटीज, और इसीलिए उसको प्रयोग में आप ले आए। नहीं तो क्या क्या हमारे अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, देखा जाता कि हमारी कॉन्शियसनेस लेवल सबसे अधिक अफेक्टेड हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस मीन्स द स्टेट ऑफ माइंड, कि मन की स्थिति, और मन की स्थिति बनती है विचारों से। जिस क्वालिटी के थॉट्स होते हैं वो क्वालिटी की मन की स्थिति बनेगी। अगर थॉट्स की क्वालिटी नेगेटिव है तो मन की स्थिति भी नेगेटिव बनेगी, अगर थॉट्स की क्वालिटी पॉजिटिव है तो मन की स्थिति भी पॉजिटिव बनेगी। और जैसी मन की स्थिति होगी वैसे ही एटीट्यूड्स, मनोवृत्ति बनेगी। मन की स्थिति से मनोवृत्ति बनती है, एटीट्यूड्स फॉर्म होने लगते हैं, और जैसे एटीट्यूड होते हैं वैसा परसेप्शन डेवलप होता है, वैसा दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देखना आरंभ कर देते, और जैसा दृष्टिकोण वैसा ही व्यवहार, बिहेवियर, और जैसा बिहेवियर होता है वैसी पर्सनालिटी फॉर्म होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनने लगता है। बट व्हाट इज इट दैट स्टिम्युलेट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस, विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? मन के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो स्टिम्युलेट करती है विचारों? सराउंडिंग्स, व्हाट एल्स? इज इट ऑलवेज सराउंडिंग्स, नथिंग एल्स? संस्कार, वो सब रिकॉर्ड कहां होता है? संस्कार भी ना मेमोरी में है ना। जब भी कोई चीज हम, जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज फीड करो तो मेमोरी में जाकर के रिकॉर्ड हो जाता है, और जब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो कीज प्रेस करो तो मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाता है। तो सेम थिंग विद द ह्यूमन कंप्यूटर, जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन आवर मेमोरी, और बहुत अच्छी फाइलिंग सिस्टम है अंदर। वो मेमोरी से रिकॉर्ड्स कितना भी पुराना मिल सकता है, बचपन का रिकॉर्ड्स भी एक सेकंड में निकल सकता है। उस ऑफिस में तो एक 25 साल पुरानी फाइल निकाली हो, रिकॉर्ड निकालना हो तो 25 घंटे तो कम से कम चाहिए, है ना। लेकिन यहां से 25 साल पहले क्या हुआ था, तुरंत नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा था उसने, ये कहा था, ऐसे नहीं हुआ था, ये हुआ था, तुरंत निकल आता है। इतनी भीतर में परफेक्ट मैकेनिज्म है हमारी, और उस मैकेनिज्म से थॉट प्रोसेस के माध्यम से कॉन्शियसनेस जो स्क्रीन है माइंड का उसके ऊपर आ जाता है, और वो स्क्रीन पर जो आया वैसे ही एटीट्यूड बनने लगता है, परसेप्शन डेवलप होता है, बिहेवियर चलने लगता है, और पर्सनालिटी फॉर्म होती है, जो पर्सनालिटी फिर से मेमोरी को रीइंफोर्स करता है, ये साइकिल। इसीलिए हमेशा देखा जाता है इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड। एक बार हम बाजार गए थे तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते के किनारे चल रहा था, बड़ा शांति से अपने रास्ते पर चल रहा था। अचानक एक गली से कुत्ता निकला और उसको जोर से काटा पीछे से, और इतना जोर से कि वो बुजुर्ग गिर गया, चिल्लाने लगा, फिर भी वो कुत्ता छोड़ नहीं रहा था उसको। लोग इकट्ठे हो गए, खून निकलने लगा उसको, उस कुत्ते को हटाया कैसे भी करके, वे बुजुर्ग को तुरंत एक रिक्शा में बिठा करके हॉस्पिटल लेके गए, और वो कुत्ते को ताकि दूसरे किसी को काटे नहीं, इसलिए फिर म्युनिसिपैलिटी को बुला करके रवाना किया। अब ये सारा दृश्य मैंने देखा, मेरा कोई कनेक्शन कहां भी नहीं था, सो आई वॉज ऑन माई वे, लेकिन ये मेमोरी में रिकॉर्ड तो हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से कहीं बाहर जा रही थी, अचानक पीछे से आवाज आई, मुड़ करके देखा, देखा एक कुत्ता मेरे पीछे चल रहा है। अब क्या होगा ना, अब मैं जानती हूँ हर कुत्ता कोई काटने वाला तो नहीं है, है ना, लेकिन जैसे वो कुत्ते को देखती हूँ क्या होता है, याद आता है और क्या करती हूँ मैं। कुत्ता क्या करेगा, के लकड़ी पत्थर मार करके उससे अपनी जान छुड़ाई, चलो, और उससे छुड़ा करके फिर मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गई, वहां देखा गेट पर एक निशान था, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, वो अपने घर में एक पालतू कुत्ता ले आई। अब मैं सीधा एंटर तो नहीं करूंगी, अब गेट से उसको आवाज लगाई मैंने, मैंने कहा तुम कुत्ते को बांध दे, मेरे को अंदर आना है। उसने कहा ये तो पालतू कुत्ता, ये कुछ नहीं करेगा। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं, आखिर जानवर जानवर ही होता है ना। देखो मेरा परसेप्शन बदल गया, जबकि मैं जानती हूँ कुत्ते के अंदर कितनी क्वालिटीज है, सो लॉयल, सो फेथफुल, सो काइंड, जेनरस, लविंग, सब कुछ है उसके अंदर, सारी क्वालिटीज है। लेकिन एक चीज जो मेमोरी में गई है, पूरी साइकिल को चेंज कर दे। उसने कहा मैं खड़ी हूं ना, तुम आ जाओ, उसके ऊपर विश्वास करके मैं अंदर गई। अब जैसे एक नए व्यक्ति को घर में कुत्ता देखता है क्या करेगा, भौंकेगा, और भौंकने के समय उसने कहा चुप बैठ तुम, वो चुप हो गया, लेकिन फिर भी वो पीछा छोड़ता नहीं है, वो क्या करेगा, पैर सूंघने आएगा। और जैसे ही मैं खड़ी हूं और उसके पैर, उसने नाक अपना पैर के पास ले आए, वो बुढ़े को भी कहां से काटा था, पैरों से ही काटा था। सो इमीडिएटली आई स्क्रीम, मूव बैक या किक द डॉग, सी माय बिहेवियर। और ये बिहेवियर देख करके मेरी फ्रेंड कहती है ऐसा कैसे बन गई है तुम, पहले तो ऐसी नहीं थी। इट्स चेंजिंग इन मी, माय पर्सनालिटी हैज स्टार्टेड चेंजिंग। उसको मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं तो वही हूं, लेकिन ये कुत्ते से डर लगता है। नहीं, उसने कहा तुम पहले जैसे नहीं है, पहले तो तुम बड़ी बहादुर थी, आजकल तेरे को क्या हो गया, तेरे को जरूर तुम बदल रही। एक इंफॉर्मेशन काफी है ये पूरी साइकिल को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देती है। ये सिर्फ कुत्तों के साथ नहीं है, ये इंसान के साथ भी। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, बहुत कोई अर्जेंट मैटर है, पढ़ रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर है, और वो केस स्टडी है या कुछ भी है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति आता है, आकर के कैसे हैं, क्या हो रहा है, कैजुअल टॉक्स, फैमिली कैसे हैं, ये सब पूछा, बैठ गए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कह रहे तुम वो शर्मा जी को जानते हो, मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, सो नाइस, लविंग, काइंड, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, जितनी अच्छी बातें जानती थी बोल दिया मैंने। उसने कहा मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब लेकिन कहा तो तुरंत हम लेकिन क्या हुआ, वी वॉन्ट इंफॉर्मेशन, क्या हुआ लेकिन, उसने कहा मैंने यही समझा था, लेकिन आजकल इंसान का भरोसा नहीं है, उसका इंटेंशन कितना गलत हो सकता है ये हमें मालूम नहीं होता है। कहा मैंने उसको अच्छा व्यक्ति समझकर उसकी मदद लिया, और मदद लेने के बाद पता चला ये इतना गलत इंटेंशन वाला व्यक्ति है, और उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जो इतना स्ट्रेस हो गया है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, लड़ाई हो गई, ये हो गई, ऐसे 10 मिनट की एक कहानी सुनाई उसने मुझे, और उसके बाद उसने तो अपने आप को खाली करके चल दिया, है ना। अब जो इंफॉर्मेशन मेरी मेमोरी में गया, अब मैं वही कॉन्सेंट्रेशन से उस कार्य में फिर से लग सकती हूं, नहीं, एंड इमीडिएटली माय थॉट प्रोसेस इज स्टिम्युलेटेड, क्या मिस्टर शर्मा जी ऐसा हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं। और फिर मेमोरी से हर इंसिडेंट को ढूंढना चालू करती हूं, पिछली बार भी ऐसा किया, हो सकता है यही भाव हो, यूसी मिस्टर डाउट आ जाता है, यही भाव होगा, यही होगा, लेकिन उस समय उस चलो अच्छा हुआ हम तो बच गए, वो हाँ मेरे फ्रेंड बेचारे फंस गए, ये हुआ, ऐसे अनेक प्रकार की बातें मन में विचार चालू हो जाते हैं शर्मा जी के विषय में, और फिर मेरी कॉन्शियसनेस वैसी बनने लगती है। और ये विचार करते करते 25 मिनट निकल गई, और 25 मिनट के बाद शर्मा जी आ गए, हाँ अब उसको कैसे देखेंगे हम, मेरा दृष्टिकोण क्या होगा, मेरी मनोवृत्ति क्या होगी, मेरी कॉन्शियसनेस क्या होगी, मेरी थॉट प्रोसेस जो चल रही है। See? उसने भी कैजुअल वे में आकर क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ ठीक है पूछा, यहां तो वहां का समाचार सब। और उसके बाद उसने देखा कुछ मैं काम कर रही, कहा ये क्या है। हमने कहा ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा क्या बात है, लाओ मैं आपको मदद करता, मैं फ्री हूं। अब हम उसकी मदद लेंगे, क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठ के बातें करते। वो फाइल को समेट देती हूँ, कार्य को समेट के साइड में, माय बिहेवियर चेंजेस। शर्मा जी ने सोचा ये पहले तो कभी ऐसा नहीं व्यवहार किया मेरे साथ, कभी मुझे मना नहीं किया, आज क्या हो गया, जरूर कोई बात है। वो मेरी मेमोरी खोदना चालू करते हैं, हो सकता है निकल आए, हो सकता है उसको अंदर रखे हम, और जितना उसको छिपाने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा उसको सेंस होता है जरूर कोई बात है, जरूर कोई मामला है उसके दिमाग के अंदर। और उसके बाद वो मुझे कहते हैं आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं तो वही हूं, नहीं पहले आप ऐसे नहीं थे। समथिंग इज चेंजिंग इन, वन इंफॉर्मेशन इज इनफ टू चेंज द होल साइकिल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली वन इंफॉर्मेशन इज इनफ टू चेंज द होल साइकिल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सारे दिन में सुबह से लेकर हमको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, ढेर सारी, उसमें कितनी पॉजिटिव होती है कितनी नेगेटिव होती है, 90% नेगेटिव है ना, 10% पॉजिटिव होंगी या 10% भी नहीं होगी, है ना, परसेंटेज ही नहीं है। यहाँ यहाँ की बात तो नहीं करेंगे, यहाँ तो दुनिया ही अलग है, है? इसलिए यहाँ तो 90% पॉजिटिव मिलेगा, 5% कहीं न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो नेगेटिव मालूम पड़ा है, कि भाई क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या चल रहा है, तब मालूम पड़ा कि हाँ कुछ हो भी रहा है। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर ही नहीं आता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह आपका माइंड पोल्यूट तो नहीं होता है, हा? और सुबह आपका दिन अच्छे विचारों से शुरू तो होता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कहती हूँ मैं, लेकिन दुनिया के अंदर एनवायरमेंट ऐसा बन गया, आप तो वास्तविकता लिखते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बुरी बात है ही नहीं, लेकिन ये तो जरूरी है ना, आज हम लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वी वॉन्ट टू बी विद द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर के बिना तो चलना नहीं, किसी को भी नहीं चलता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो दुनिया में। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते होते हैं तभी तो ये सेमिनार रखा है। हाँ और क्या, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ या नहीं हुआ हमको मालूम ही नहीं हो तो चल सकता है इस संसार के अंदर, कोई जी सकता है बिना इंफॉर्मेशन के? तो बिना इंफॉर्मेशन, मीडिया के बिना कोई भी नहीं जी सकता। अभी कहा ही नहीं, किसको नहीं कहा, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा, नहीं तो हम न्यूज़पेपर ही नहीं रखते थे। नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह में पहला उठने के साथ ही जो न्यूज़पेपर, कईयों को एडिक्शन होती है कि उठते ही न्यूज़पेपर, और ऐसा भी नहीं कि न्यूज़पेपर में अच्छा चिंतन नहीं आता, अच्छी बातें भी आती है, अच्छे चिंतन के लेख भी आते हैं, लेकिन ह्यूमन टेस्ट क्या है, हाँ कितना घोटाला हुआ, कितना स्कैम्स हुआ, कितना स्कैंडल्स हुआ। हाँ और जिस दिन पेपर में ऐसा कोई न्यूज ना हो तो आज कोई दम नहीं है पेपर में, हाँ ऐसे कहते हैं लोग। तो इसीलिए डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इतनी पावरफुल है कि उसको जो कुछ भी देते हैं तो सुबह मॉर्निंग आवर्स में वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर चला जाता है, और वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जो इनपुट जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो हम ये कहते हैं कि रीड, नो प्रॉब्लम विथ रीडिंग, लेकिन सुबह में अच्छे चिंतन से अपनी मेमोरी को एम्पावर कर, और उसके बाद वो बातों को अगर आप लेंगे भी that will just stay as an information. It would not go into your system. ये हमारी mechanism में चला जा रहा है ना, ये पूरा हमारी system में जा रहा है, ये हमारी पूरी mechanism को खत्म कर रहा है, क्योंकि जितना ये negative चलता है उतना प्रेशर क्रिएट होता है, जिस प्रेशर को कहते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस इज नथिंग बट द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड ऑन द माइंड. और इसीलिए मीडिया पर्सन को आज कितना स्ट्रेस होता है, सबसे अधिक स्ट्रेस किसको होता है, होता है मीडिया वालों को. क्यों होता है, क्योंकि फ्रॉम मॉर्निंग एज सुन एज दे गेट अप सो मच नेगेटिव इंफॉर्मेशन, और वो उनको लेना ही पड़ता है, उसके बिना उनको चलता नहीं है, और वो लेते लेते सारा दिन उसमें ही, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी क्या बन जाती है. एंड हाउ डू पीपल ऑल्सो सी देम, नेगेटिव पर्सनैलिटी के रूप में देखने लगते हैं. तो इसीलिए हम ये कहते हैं दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन, कि स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जैसे पहले के युग में सुबह लोग उठ करके जैसे कोई भक्ति करता था, अच्छी बातें पढ़ता था, अच्छा करता था, तो उससे उसकी मेमोरी इज एम्पावर्ड. क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर जैसे सक करता है, इसी प्रकार हमारी मेमोरी सक करती. साइकोलॉजी के हिसाब से हर व्यक्ति की मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी 2 घंटा या 3 घंटे तक एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद नहीं करती, सैचुरेट हो जाती, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो हमारे अंदर नहीं घुसेगा, और इसलिए वो बातें भूल जाते हैं अक्सर करके. कोई बाद में बात सुनाता है तो कहेंगे वो बात इतनी ध्यान पे नहीं है, चलो ठीक है, नोट किया होगा, कहीं लिखा होगा, लेकिन अंदर नहीं गई. सी, लेकिन बच्चों को भी इसलिए क्या सिखाते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, कहते थे ना ऐसा बचपन में सुना था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और सुबह उठ करके जब वो पढ़ाई करता है तो ही इज अ वाइज मैन, विजडम उसकी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया. और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो यू एम्पावर योर सेल्फ, योर मैकेनिजम्स. इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. अभी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमारी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही है. एंड दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन, कि सुबह सुबह अगर 1 घंटा भी आपने अच्छी बातें सुन लिया, उससे मेमोरी इतनी हेल्दी हो जाती है, माइंड की स्टेट इतनी हेल्दी हो जाती है कि उसके बाद आपके इंटरेक्शन भी हेल्दी होते हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल कम्स डाउन, नीचे आ जाता है, कम हो जाता है. और यहां पर यही बात है कि जैसे कहा भाई इतने लोग हैं, स्मूथ कार्य कैसे चल रहा है. आज घर में अगर 4 जवान बेटे हो, उसको संभालना भी कैसा होता है, मुश्किल है. यहां इतने जवान बेटे हैं दादी जी को, और कैसे संभाल रही, कैसे चला रही, हाउ आर दे एम्पावर्ड, सेल्फ एम्पावर्ड. सुबह सुबह उनको अच्छी ज्ञान की बातें मिलती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दिन भर में कम हो जाता है. दे आर एबल टू कन्वे द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं है. तो सुबह सुबह अपनी मेमोरी को जिसने एम्पावर कर लिया, उसके थॉट प्रोसेस अपने कंट्रोल में है, कॉन्शियसनेस जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, एटीट्यूड्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, परसेप्शन चेंजेस, दृष्टिकोण हर बात के प्रति हमारा बदल जाता है, ये भी हो सकता है. जैसे नहीं तो वो हमारे दृष्टिकोण को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन बाद में हम ये सोचना नहीं, ये भी हो सकता है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एड टू योर क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिव बन जाता है. तो उसके बिहेवियर में अंतर नहीं आता है, बट ही इज एबल टू लिव इन द वर्ल्ड, बी विथ ऑल विद द इंफॉर्मेशन, बट हिज बिहेवियर इज विद इन हिज कंट्रोल, एंड सो हिज पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग. जैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहे, क्योंकि ये कौन मैनेज करेगा, हु इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस सेल्फ, दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट, दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट, नथिंग एल्स, नहीं तो कौन मैनेज कर, यस।
और एक अच्छी खासी चलता हुआ, जैसे आपने कहा नॉर्मल आदमी समाज के लिए जो पॉजिटिव कुछ कर सकता था, जाकर समाज से अलग हो जाता है या गुंड बन जाता है या बदमाश बन जाता है या पागल हो जाता है कुछ भी, वो आदमी जिसने वो हादसा देखा है जिससे उसकी परसेप्शन, जिंदगी, पर्सनालिटी, बिहेवियर सब चेंज हो गया, वो क्या करे,
वो क्या करेगा अभी उसको बदल,
क्या करेगा, नहीं वो क्या, हाँ क्या करे,
हाँ वो क्या करेगा। अब जैसे मैंने ही देखा, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा, अब हम क्या करेंगे अपने आप को एम्पावर करने के लिए, ये परसेप्शन मुझे चेंज तो करना होगा, क्योंकि आई नो आई कैन नॉट लिव विद दिस नेगेटिव साइकिल, वो तो मेरा सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है अंदर में, मुझे अपसेट कर रहा है, बार बार जब भी कुत्ते को देखती हूँ मैं अपसेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मुझे अपने आप को सजेस्टिव थॉट्स देने, दिस इज वेयर स्पिरिचुअल डायमेंशन कम्स इन एंड हेल्प्स अस, कि जो हमारी इंटरनल मैकेनिज्म को चेंज करने में हमें हेल्प करती, तो ये आज स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है या स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू किया उसके कारण वो चीजें बदल गई।
यहाँ
क्या आज की दुनिया में जापानीज आर द मोस्ट क्रिएटिव, लेकिन इंडियंस के लिए ये कहा जाता है कि वन इंडियन इज इक्विवेलेंट टू थ्री जापानीज, लेकिन फिर भी इंडिया पीछे क्यों रह गया, इसका कारण यह है कि व्हेन टू इंडियंस गेट टुगेदर क्या होता है, their capacity is equivalent to one Japanese, and when three Indians get together क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उसी में ही लगे, इसीलिए उसकी क्रिएटिविटी कम हो गई है, नहीं तो आज इंडिया बहुत क्रिएटिविटी है, आज वही इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वेस्टर्नर्स को सिखाते हैं, प्रैक्टिकल आप देखते हैं तो इंडियंस आर हाइपर क्रिएटिव, ये नहीं कहो, क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बचपन में जो उनको मिला हुआ है, जिस कारण वो भीतर से खोखले नहीं है। फॉरेनर्स क्या होते हैं कि दे रिस्पेक्ट, और इसीलिए भले वो खोखले होते गए लेकिन फिर भी उनकी क्रिएटिविटी नजर आई, और हमारी क्रिएटिविटी अगर है भी तो उसको बढ़ावा नहीं दिया, लेग पुलिंग, हाँ, और एक दूसरे के टांग खींचने में जब लगे रहते हैं इंडियंस, तो उसकी क्रिएटिविटी फिर बाद में ठप हो जाती है, कैसे तो छोड़ो बाहर जाएं वहां चांस मिलता है, जो बेस था वो कम खत्म हो गया जब से वेस्टर्न कल्चर आया है, पर चलती थी संस्कृति, लेकिन ये पिछले 200 साल में ही आप देखो कि आपके होते होते आपके बच्चे के बच्चे पोते चीज पुरानी तो होनी है, आज कपड़ा कितना दिन चलेगा, 10 साल पहनने के बाद पुराना नहीं होगा, हर चीज पावरफुल होते हुए भी इट इज टोटली एम्पावर्ड बाय द वेस्टर्न, वो नया था प्लीज। हाँ,
उस हादसे से आपको गुजर के वापस नॉर्मल पोजीशन में पहुंचना है तो उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लें।
यस, कई बार देखा है कि कई डिप्रेशन के केसेस, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड केसेस, उसको भी मेडिटेशन के माध्यम से ठीक कर दिया है या हो गए। फिजिकली इल पीपल हु वर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, वो भी ठीक हो गए। मेडिटेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, क्योंकि वही एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, तो वो पॉजिटिव एनर्जी इज सो एसेंशियल इन टूडेज एज, है ना। अकेला हाथ किसी ने काट करके रास्ते पर रख दिया हो तो हम ये नहीं कहेंगे शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर का एक अंग पड़ा है, हाथ पड़ा है। तो इसी प्रकार मन, बुद्धि और संस्कार, कि मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स, जो हमारी पर्सनालिटी फॉर्म करती है, ये तीनों कनेक्टेड है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो संस्कार की उत्पत्ति या संस्कार जो बन जाते हैं उसी के आधार पर विचारधारा फिर शुरू होती है। कर्म अनुसार संस्कार बनते हैं। मन ने जो विचार किया, नहीं, मन ने कर्म, हाँ, तो तीनों साइकिल में चला। नहीं नहीं देखो, मन जैसा सोचता है, बुद्धि उसको एनालाइज करती है, जजमेंट देती है। कर्म में आते हैं, कर्म एक संस्कार छोड़ देता है, इंप्रेशन छोड़ देता है, जो रिकॉर्ड बन जाते हैं। उसी रिकॉर्ड के आधार पर फिर से मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, पहले उसने पिया नहीं, पहले उसको विचार कहां से आया? एनवायरमेंट से, कि लोग पी रहे हैं, चलो मैं भी पी के देख, विचार उत्पन्न हुआ है ना, क्योंकि लोगों को देखा है, तो वो देखा हुआ मेमोरी में गया हुआ है, और उस कारण से इंटेलेक्ट ने उसको मना किया। इंटेलेक्ट मना विवेक, तो विवेक मना करता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तो मन उसको एडवाइस करता है कि नहीं नहीं एक पीने से कोई आदत नहीं पड़ती। फिर विवेक मना करता है, फिर मन कोई दूसरा लॉजिक देता है, ऐसे करके अंत में मन उसको कन्विंस कर लेता है और उसने पिया। वो पिया, वो जो संस्कार बन गया उसका, और पीने के बाद दूसरी बार जब वहां से क्रॉस होता है वही दुकान से, उसको फिर आता है एक बार और पी लो, तो वो संस्कार के आधार पर फिर विचार उत्पन्न होता है। सी दिस इज अ साइकिल, इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, और मन जो है ये सूक्ष्म है। मन के अंदर सोचने की शक्ति, ब्रेन इज फिजिकल, कि जिसके माध्यम से आप मन की गति को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज रिकॉर्डिंग जो होती है कि मन की गति कैसे चल रही है, इज अ फिजिकल पंप, वो पंप है होते हैं, वो मन कहलाता है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो रैशनल हो, वो मन के अंदर उत्पन्न हुआ। उसके बाद विवेक उसको जस्टिफाई करता है, एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जहां विजडम है उसी के माध्यम। इसलिए कहा जाता है विवेक कभी गलत रास्ता नहीं बताता है, तो विवेक उसको कंट्रोल करने वाला। इसलिए कहते हैं मन जो है ना एक वकील जैसा है, वकील के पास हर बात का एक लॉजिक रहता है, चाहे केस सही हो या गलत हो, लेकिन उसके पास लॉजिक होगा। लेकिन बुद्धि जो है ये जज, डिसीशन पावर, हाँ कहेंगे ऑफ आवर माइंड, जो इमोशनल एस्पेक्ट, उसको हृदय कह दिया और उसको मस्तिष्क कह दिया, लेकिन दिस आर द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन। वो तो ब्रेन के अंदर है, दोनों संस्कार, वातावरण, सब कुछ ठीक है।